समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
कहते हैं वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता और वक्त के बाद चाहने से भी कुछ नहीं मिलता, तो समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और समय से याद आया कि हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। तो बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। हर दिन की तरह चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो एंड गुड इवनिंग अभिषेक।
हेलो गुड इवनिंग जया। हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट जया भारती। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। Prime Minister Narendra Modi reached Tel Aviv on a two-day visit to Israel. This is the second visit of Prime Minister Modi to Israel.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इसराइल यात्रा से रणनीतिक साझेदारी के लिए नए लक्ष्य निर्धारित होंगे और दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ होंगे।
सुप्रीम कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ रेफरेंसेस टू करप्शन इन जुडिशरी इन अ क्लास 8 NCERT टेक्स्ट बुक।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय बलों के कर्मियों को आवंटित वाहनों में GPS ट्रैकर लगाने का निर्णय लिया।
Foreign Secretary Vikram Misri stresses India's commitment to responsible use of military artificial intelligence amid global uncertainties.
और कोलंबो में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला श्रीलंका से।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about National Arogya Fair. Well, we'll start off with a quote by Prime Minister Narendra Modi, who said, India is a treasure trove of herbal plants. It is, in a way, a green gold. Well, today we are talking about something very close to our health and well-being, the National Arogya Fair. President Draupadi Murmu to the inaugurated four-day National Arogya Fair in Shegaon of Buldana district in Vidarbha region of Maharashtra. The National Arogya Fair is more than just a health exhibition. It is a powerful platform that brings together doctors, researchers, wellness experts and the public under one roof to spread awareness about preventive health care and holistic living. Ayush represents traditional Indian medicine systems, Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani and Siddha, and Homeopathy promoted by India's Ministry of Ayush. It provides holistic, preventive and affordable health care, focusing on lifestyle management, boosting immunity and treating chronic conditions. And President Draupadi Murmu today said that Ayurveda, Yoga and other Ayush systems are not only limited to treatment of diseases, but is a science of holistic health management. She said Ayurveda provides scientific guidelines for diet, daily routine, seasonal routine and disease prevention.
बिल्कुल अभिषेक, और स्वास्थ्य पर के महत्व पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सर्वमान्य तथ्य है कि इलाज से बेहतर है रोकथाम। उन्होंने कहा कि बीमारी की रोकथाम न केवल व्यक्ति के लिए लाभकारी है बल्कि देश के स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ भी कम करती है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि नियमित व्यायाम, उचित आहार और संतुलित जीवन शैली जैसे निवारक उपायों पर आज जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लोग तनाव मुक्त स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग अपना रहे हैं और आयुर्वेदिक उपचार और दवाएं दुनिया भर के लोगों को लाभ पहुंचा रही है।
आजकल प्रिवेंटिव स्टेप्स जैसे नियमित व्यायाम, उचित खानपान और संतुलित जीवन शैली पर बोल दिया जा रहा है। बीमारियों की रोकथाम में समेकित चिकित्सा पद्धति का महत्व आज पूरा विश्व समझ रहा है। तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन शैली के लिए विश्व भर में लोग योग का अपना रहे हैं।
Yes, and she also highlighted efforts taken by the government over the past decade to provide the world with a healthy future based on the legacy of accumulated knowledge of Ayush systems of medicine.
औषधियों पौधों की खेती ना केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारती है बल्कि इस मिट्टी के स्वास्थ्य और संरक्षण में भी मदद करती है। इसीलिए आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने से ना केवल लोगों का शारीरिक और आर्थिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलता है।
Yes, and the president said that Ayush departments have been established in all new AIIMS. Several steps have also been taken to promote ease of doing business in the Ayush sector, thereby encouraging MSMEs and startups in the production and export of medicines.
आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संचित ज्ञान की विरासत के बल पर विश्व को एक स्वस्थ भविष्य देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पिछले एक दशक में अनेक कदम उठाए हैं। सभी नई एम्स में आयुष विभाग की स्थापना की गई है। आयुष प्रोफेशनल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आयुष शिक्षण और प्रशिक्षण में अनेक सुधार किए गए हैं। लेह में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेवारेकमा द्वारा सेवारेकमा में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। आयुष के क्षेत्रों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं।
और जब आयुष विभाग की बात हो रही है तो बता दें कि आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष क्षेत्र के लिए आवंटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को धन्यवाद दिया। श्री जाधव ने कहा कि सरकार ने आयुष क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आयुर्वेद के 3 नए अखिल भारतीय संस्थानों की स्थापना की घोषणा की है।
Yes, on this occasion the president also facilitated medical professionals who have done exceptional work in the field of Ayush. She also took darshan of Sant Gajana Maharaj inside the Gajanan Temple in Shegaon.
केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के संत नगरी शेगांव में आज से 28 फरवरी के दौरान 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन किया जाएगा। तो सुनते हैं हमारी संवाददाता की विशेष रिपोर्ट।
इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि आरोग्य मेले का उद्देश्य आयुष पद्धतियों का प्रसार करना, नागरिकों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना तथा औषधीय पौधों की खेती के माध्यम से किसानों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। मेले में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी जैसी विभिन्न आयुष पद्धतियों के अंतर्गत निःशुल्क जांच, परामर्श और औषधियां उपलब्ध होगी। साथ ही स्वास्थ्य विषयक प्रदर्शनियां, विशेषज्ञों के व्याख्यान, योग और प्रात्यक्षिक और थेरेपी काउंटर नागरिकों के लिए खुले रहेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए बताया,
हमारी परंपरा में कहा गया है आरोग्यम परमम शुभम, अर्थात आरोग्य यानी समग्र स्वास्थ्य ही सबसे बड़े सुख है। शरीर ही समस्त कर्तव्यों को पूरा करने का प्रथम साधन है। देश को सशक्त बनाने में स्वस्थ नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देशवासियों को स्वस्थ पर रखने में आयुष चिकित्सा पद्धतियों ने अमूल्य योगदान दिया है। योग, आयुर्वेद और सिद्ध जैसे मंत्र प्राणायाम इस समय से लोगों की सेवा करती आ रही है जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति को प्रचलन नहीं था।
27 फरवरी को दोपहर 3 बजे किसानों के लिए आयुर्वेदिक खेती, उत्पादन और विपणन विषय पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने किसानों से औषधीय पौधों की खेती की ओर रुख करने का आह्वान किया। उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रत प्रमुखता से उपस्थित थे। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
तो अब बात करते हैं इस मेले की। यह मेला भारत की समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा विरासत को प्रदर्शित करता है और लोगों को स्वस्थ रहने के प्राकृतिक और टिकाऊ तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मेले का एक प्रमुख आकर्षण आयुष का प्रचार प्रसार है, जिसका अर्थ है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। ये प्राचीन प्रणालियां न केवल रोगों के उपचार पर बल्कि शरीर और मन में संतुलन बनाए रखकर उनकी रोकथाम पर भी ध्यान केंद्रित करती है। तो भारत में यानी हमारे देश में स्वास्थ्य पर्यटन में वर्तमान में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और यह समग्र कायाकल्प और कल्याण के अनुभव चाहने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बनने की ओर अग्रसर है। स्वास्थ्य पर्यटन क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से उत्पन्न होती है, जो आयुर्वेद जैसी स्वस्थ स्वास्थ्य प्रथाओं में गहराई से निहित है और एक अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव के रूप में कार्य करती है।
Yes, and additionally, the cost effectiveness of wellness retreats and services in India compared to Western countries makes them more accessible to a broader global audience. The country also benefits from a growing pool of skilled professionals, including qualified yoga teachers, Ayurvedic practitioners, and wellness experts who cater to the diverse needs of the international visitors.
और खास बात ये है कि जो भारत की समृद्ध बुनियादी संरचना, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और जो सुगम यात्रा संपर्क है ना, इसे वैश्विक स्वास्थ्य गंतव्य के रूप में और भी आकर्षक बनाते हैं, जिससे यह दुनिया भर के स्वास्थ्य प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन जाता है। गोवा और केरल के शांत समुद्र तटों से लेकर राजसी हिमालय तक फैले देश के रमणीय स्थल पर विभिन्न प्रकार के मनमोहक परिदृश्य हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न अनुभवों के लिए आदर्श हैं और इस प्रकार समग्र कल्याण के लिए भारत को एक प्रमुख गंतव्य के रूप में भी स्थापित करते हैं।
Yes, absolutely. And the fair structure is a large public outreach initiative to expand access to Ayush-based preventive and promotive healthcare. Visitors will be provided free consultations, health checkups, and medicines across Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Yunani, Siddha, Soa, Rigpa, and Homeopathy systems. The event will also feature yoga demonstrations, expert lectures, therapy showcases, and exhibitions by reputed Ayush institutions and industry stakeholders.
तो राष्ट्रीय आयोग्य मेला 2026 स्वास्थ्य सेवाओं, ज्ञान प्रसार और ग्रामीण आजीविका संवर्धन के लिए एक समन्वय मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में आयुष प्रणालियों की भूमिका को सुदृढ़ किया जा सके। महाराष्ट्र और पड़ोसी राज्यों के नागरिकों, किसानों, छात्रों और स्वास्थ्य पेशेवरों को 4 दिन के इस आयोजन में बड़ी संख्या में भाग लेने और आयोजित होने वाली सेवाओं तथा कार्यक्रमों से लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया है।
Yes. Yes, of course, and artificial intelligence is playing a significant role in the banking sector by enhancing data analysis, predicting trends and fraud risks, and improving customer engagement. And the recently concluded India AI Impact Expo 2026 in Delhi showcased how AI is rapidly transforming India's banking ecosystem, with voice-enabled AI agents now handling everything from customer queries to back-end operations, reducing turnaround time and improving efficiency across the sector. And talking to Akashvani News, Arpan Khosla, Head of Marketing at Blue Machines AI, described the India AI Impact Summit as a historic moment for India's AI ecosystem.
I think India AI Impact Summit is a historic moment, I feel like, for India. I think this is a pivotal moment where the world realizes that we are not just consumers of AI, we are actually building them. This is a great showcase. So imagine the possibilities with AI entering the workforce. Now human beings can focus more towards, you know, more creative jobs, and AI can take over the more redundant, the more basic tasks. I think India AI Summit, you've seen global leaders coming here, just puts us as the leaders there.
और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है।
Yes, and we start off with a story from Assam. And the Osomi Saras Mela, organized by the Assam State Rural Livelihoods Mission of Panchayat and Rural Development. And this Mela is aimed at empowering rural women entrepreneurs and artisans. It provides a platform for self-help groups to sell handmade products, including handloom, handicrafts and organic food, while promoting local economic development and rural self-reliance. We have more from a correspondent.
Union Minister for Rural Development, Agriculture and Farmers Welfare, Shivraj Singh Chauhan, on Monday formally inaugurated the Assami Saras Mela at Srimanta Shankardev Kalakshetra in Guwahati. The event features more than 250 stalls, including 100 stalls from other parts of the country, showcasing products made by self-help groups. Visitors can explore a wide range of items, including Assam's traditional Muga Mekhala Chador, GI Tech water hyacinth products, bamboo and canned crafts, masks and other handmade goods. Products from other states such as Kolhapuri footwear from Maharashtra, Kosa saris from Chhattisgarh, Khadi kurtas, black resins, handicrafted jewelry from Goa, and various regional delicacies are also available. This Saras Mela connects buyer and sellers. and acts as a vital link allowing rural artisans to sell products directly to the consumers, bypassing middlemen. It also promotes the vocal for local concepts and encourages the public to support local livelihoods and promote traditional sustainable products. This Mela is scheduled to conclude on 8 March. Aminul Lokzadar, Akashbani News, Guwahati.
तो अब चलते हैं कोलकाता, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ने कोलकाता डॉक सिस्टम के एक प्रतिष्ठित बैस्क्यूल ब्रिज के आधुनिकीकरण के लिए एक बड़ी नवीनीकरण परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना और बंदरगाह संचालन को सुचारू बनाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
Built in 1966 by Austrian engineering firm Wagner Bryo Bridge Systems AG, the double-leaf rolling bridge is a critical link between the garden-rich Metyabruz region and the rest of the city. The structure opens to allow cargo vessels to move between Khidirpur Dock 1 and Dock 2, and closes to facilitate road traffic, including heavy commercial vehicles and daily commuters. After nearly 6 decades of continuous service, port authorities said a comprehensive overhaul had become essential to maintain structural integrity and mechanical efficiency. The bridge serves as one of the most important evacuation routes for the port, making its upgrade strategically significant. The Union Ministry of Ports, Shipping and Waterways has sanctioned rupees 40 crore under the Sagarmala scheme. The funding reflects the center's push to modernize port infrastructure to meet the growing demands of trade and industry in eastern India. The project is scheduled for completion by May 2027. Once upgraded, the bridge is expected to reduce delays, streamline cargo movement, and improve both maritime and road connectivity, strengthening the region's overall economic productivity. Sushmita Mondol, Akashbani, Kolkata.
और अब कोलकाता से चलते हैं कश्मीर की ओर, जहां महिलाएं और लड़कियां धीरे धीरे विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में अपना करियर बना रही हैं, और न सिर्फ करियर बना रही है बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान भी दे रही हैं। अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
The focus on women and girls in science leadership is increasing day by day, with public opinion favoring equitable opportunities to women and girls to pursue careers in science education. Talking about the relevance and importance of involvement of women in STEM, that is science, technology, engineering and mathematics in Jammu and Kashmir, Head of Department of Chemistry at National Institute of Technology in Srinagar, Professor Kausar Majid said,
जहां तक science का ताल्लुक है, इसमें आपको एक creative thinking की जरूरत होती है। आप को जो आउटपुट इसका होता है वो इनोवेशन होता है, वो सोशल अपलिफ्टमेंट होता है। अगर आप इंक्लूसिव और मीनिंगफुल इनोवेशन की बात करेंगे तो वुमेन की पार्टिसिपेशन साइंस में बहुत ही जरूरी है। अगर आप लड़कियों को अर्ली एज में साइंस एजुकेशन देंगे, उनको रोल मॉडल्स के बारे में बताएंगे, उनको अर्ली एज में ये दिखाएंगे कि आपका सिटम में कितना अच्छा कैरियर है, तो सर्टनली इस सारी चीज में सिटम में ओवरऑल ग्रोथ तो होगी।
फॉर परिक्रमा, तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर।
Yes, and Southern Air Command of the Indian Air Force has successfully conducted a high-tempo joint maritime exercise named Kalari Leap in the Lakshadweep and Minicoy Archipelago. The exercise was aimed to validate joint planning, rapid force projection and precise operational execution in complex maritime environments. We have more from a Thiruvananthapuram correspondent.
The Kalari Leap exercise was validating Southern Air Command's strength in rapid force projection and precision execution in the challenging maritime environment. Armed Forces Special Operations Division and the Indian Coast Guard also participated in the Kalari Leap joint exercise along Lakshadweep area. Exercises including anti-ship strike, maritime search and rescue operations were also conducted during the Kalari Leap, along with the assets of Indian Air Force. Coast Guard ships, Gemini boats and Dornier 228 aircrafts were also deployed for the Kalari Leap. The exercise was demonstrating Air Command's readiness to execute integrated air, maritime, special operations along island domains. Smithy M. Pallurithi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
And And now some business news. The Sensex and the Nifty ended in a positive territory after volatile trade today. The Sensex added 50 points to close at 82,276, while the Nifty rose 58 points to settle at 25,483. For more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
On the 25th of February, Pitt's India Act of 1784 was passed by the British Parliament in order to rectify the shortcomings of the Regulating Act of 1773. The Act was named after William Pitt, who was then Prime Minister of Britain. The Act was also known as the East India Company Act, 1784.
The purpose of this Act was to draw a clear distinction between the commercial and political activities of the East India Company. The Act introduced a system of dual control under which, for political matters, the Board of Control was created, and for commercial affairs, the Court of Directors was appointed.
The Pitt's Act thus helped in establishing the British Crown's authority over the civil, military and revenue matters in the Indian territories. The East India Company, however, held monopoly over the commercial activities in the Indian territories and also had the right to appoint or dismiss its own officials.
It was after the coming of the Pitt's India Act that the property of the East India Company was called British Possessions in India. Also, the direct control over the administration of India was given to the British government. These changes in administration, brought about by the Pitt's India Act, continued till 1858, when the British government was forced to change the way of administration after the First War of Independence in 1857.
We also remember the Indian independence activist Ravi Shankar Maharaj, who was born on the 25th of February 1884 in Kheda district of Gujarat.
Ravi Shankar was influenced by Arya Samaj philosophy. He was one of the earliest and closest associates of Gandhiji and Sardar Vallabhbhai Patel.
Along with Darbar Gopal Das Desai, Narhari Parikh and Mohanlal Pandya, Ravi Shankar was the chief organizer of nationalist revolts in Gujarat in the 1920s and 1930s. He founded Rashtriya Shala, National School, in Sunav village in 1920. He left his rights on ancestral property and joined the Indian independence movement in 1921.
He participated in Satyagraha in 1923 and protested against Haidar tax. He also participated in Bardoli Satyagraha in 1926 and was imprisoned by the British for 6 months. He participated in relief work for flood victims in 1927, which earned him recognition. He joined Gandhiji in Salt March in 1930 and was imprisoned for 2 years. In 1942, he participated in the Quit India movement and also tried to pacify communal violence in Ahmedabad.
Yes, and we're also remembering George Harrison, who was born on this day in 1943. He was an English musician who achieved international fame as a lead guitarist of the Beatles. Known as a quiet Beatle, Harrison played a significant role in shaping the band's musical direction and later established a successful solo career, particularly through his interest in non-Western musical influences. Let's listen to the band's hit track, Hey Jude.
Hey Jude, don't make it. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make.
हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार शमशोल हुदा बिहारी को. आज उनकी पुण्यतिथि है. बिहार में जन्मे SH बिहारी फुटबॉल प्रेमी थे और मोहन बगान टीम के लिए चुने भी गए थे। SH बिहारी भले ही सीधे साधे दिखने वाले थे, लेकिन उनमें कई ऐसे गुण थे जो उन्हें दूसरों से अलग पहचान दिलाते थे। 1950 में फिल्म आई दिलरुबा और इसका एक गीत था हटो हटो जी आते हैं हम। यह उनकी पहली गीत थी और इन्हीं से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। 1960 के दशक में संगीतकार ओपी नैयर के साथ जुड़कर उन्होंने फिल्मी जगत को कई सदाबहार गीत दिए जिसको आज भी याद किया जाता है।
मेरे जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो।
फिर आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने अपनी पुरकोश कोशिश आवाज के से इनकी गीतों को अमर करने का काम किया और उन्हीं में से एक है
ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी।
Yes, and we also remembering Sir Donald George Bradman, who passed away on this day in 2001, nicknamed the Don. He was an Australian international cricketer widely acknowledged as the greatest batsman of all time. His cricketing successes have been claimed by Shane Warne, among others, to make Bradman the greatest sportsperson in history. Bradman's career test batting average of 99.94 is considered by some to be the greatest achievement by any sportsman in any major sport. And the story that the young Bradman practiced alone with a cricket stump and a golf ball is part of Australian folklore.
आज ही पुण्यतिथि है भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बोमी रेड्डी नागी रेड्डी की। इन्हें सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए 1986 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किया गया। इन्होंने ही चेन्नई में विजया वोहिनी स्टूडियो की स्थापना की, जिसे एशिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो माना जाता है।
Yes, and we also remembering Thomas More, who passed away on this day in 1852. He was an Irish writer, poet and lyricist, widely regarded in his lifetime as Ireland's national bard. And the acclaim rested primarily on the popularity of his Irish melodies, with the first of 10 volumes appearing in 1808. In this, Moore set to old Irish tunes verses that spoke to a nationalist narrative of Irish dispossession, laws and resistance. With his romantic work Lala Rook in 1817, in which these same themes are explored in an elaborate Orientalist allegory, Moore achieved wider critical recognition. Translated into several languages and adapted and arranged for musical performance by others, it established Moore as one of the leading exemplars of European Romanticism.
आज भारतीय फिल्म के आइकॉनिक विलन और अभिनेता डैनी डेंजोंगपा का जन्मदिन है, जो अपनी भारी आवाज और दमदार डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं।
लक्ष्मीदास, हमें जो चीज पसंद आ जाती है हम खरीद लेते हैं। तुम्हारा लक्ष्मी नगर हमको बहुत पसंद है। ये सूटकेस के अंदर 3 करोड़ रुपए कैश है और तुम्हारे सामने ये एग्रीमेंट के साथ 2 करोड़ का चेक है। दाम बिल्कुल बराबर है म्युनिसिपैलिटी के वैल्यूएशन के हिसाब से। अब इस एग्रीमेंट पे साइन करो, खोके उठाओ और ऐश करो।
Yes, and in a career spanning 5 decades, Danny has acted in over 190 films since 1971. In 2003, Denzongpa was awarded the Padma Shri, India's 4th highest civilian honor.
सुन सुन कसम से लागो तेरे कदम से ना उलझ रे हमसे तू चली जा तू चली जा।
बहुत कम लोग ही जानते हैं कि शुरुआती दिनों में डैनी नेपाली और हिंदी फिल्मों में गायन करते थे और ये उन्हीं की आवाज है।
Yes, and moving on, Shahid Kapoor was born on this day in 1981. He is an actor who works in Hindi films. Initially recognized for portraying romantic roles, he has since taken on parts in action films and thrillers. And he is the recipient of several awards, including 3 Filmfare Awards.
So, हमारे share prices all time low पर हैं। सारे नए ब्रांड्स फ्लॉप हो चुके हैं, ऊपर से 572 क्लेम्स। इन अदर वर्ड्स, अपनी हालत बहुत खराब है बॉस, साड़ी तो बैंड बच चुकी है। इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता, अब सिर्फ अच्छा हो सकता है और होगा। इंसान जो कुछ रियली चाहता है ना, एक्चुअली उसे हमेशा वही मिलता है। और इस बार मैं रियल में चाहता हूं, एक्चुअल में। कि हर प्रॉब्लम को सामने से फेस करो।
ये शाहिद की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल जब वी मीट का डायलॉग था, तो सुनते हैं इसी फिल्म का एक प्यारा सा गीत। श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इस प्यारे से गीत के साथ इजाजत दीजिए जया और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार।